बातां आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
राम राम सा। ऊँटारी बातां कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊँट पालक भाई ने भूमजी भाई और
गौरा बेन रा गणान गणा।
राम राम गौरा बेन।
राम राम भूमजी भाई। राम राम भूमजी भाई। चौपाल में आऊ नी जने सगला मने पूछे गौरा बेन पावणा थाने बुलावते आए जावे कई जने मैं माने समझाऊं के मांगणिया ने देवणिया मिली जावे है।
अरे सोला ना खरी कई गौरा बेन ज्ञान सारू देखो मांगण में केड़ो संकोच
करनो ही नहीं चाहिए भूमजी भाई। और ज्ञान रो खजानो तो एड़ो है के देवणियो भूले पण लेवणियो कदी नहीं भूले।
समझ गयो थाणो विसारो गौरा बेन। थे बात करो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र सु आउन वाला पावणारी जिका आपने कोई भी विपदा वे झट करता हाजिर हो जावे।
गोमजी भाई बात विपदा माय काम आउंडी करी नी तो इन सरू एक जूनो दू सुनाऊ था।
हाँ, बिल्कुल।
विपदा बराबर सुख नहीं जे गिनिया दिन होए दुष्ट मित्र बात्र बंधु जान पड़े सो कोई।
बहुत ही बढ़िया दोहा सुना है ऐसा। पर गौरा बहन देखो अठे आउन वाला पावणारी तो परख होगी वे तो जने न्यू तो देवानी उनी बगत ने सु हाजिर हो जावे।
तो भूमजी भाई आज अपन ने विपदा सु बारे काटन ने पावणा कुण पधारिया है और बाता कई कराला।
अरे आज पावणा पधारे है डॉक्टर शरद चंद्र मेहता और बात कराला ऊंटारी ऊंट संरक्षण एक मुहिम।
पण सगला पहला यारो स्वागत करो। राम राम तो करला।
डॉक्टर साहब आपरो चौपाल में घण घण स्वागत है। आपने मैं करा
राम राम सा।
राम राम भोमजी भाई। राम राम गौरा बहन और सभी ऊंट पालकों को मेरा नमस्कार।
डॉक्टर साहब देखो सगला पहला तो आई पूछ लू क्योंकि देखो ऊंटारी बात है नी आज जत्सु आपा चालू करियो है नी कई लोग नुआ नुआ जुड़ता ही जा रहा है तो मने उम्मीद है कि आज भी कोई न कोई नुआ जिको ऊंट पालक है वो ये कार्यक्रम ने सुनने बैठा वेला और अठे बैठोड़ा में भी देखो कई उणिया मने यहाँ लागे है कि वे नुआ है। तो सगलों पहला तो देखो यानी आप बताओ कि ऊंठारी बात अब बात थाने मन रे मायने आई क्या कि इन्हें चालू करना है इन रे मायने कई बातें करनी है और क्यों करनी है।
देखो गौरा बहन दो बातें बहुत स्पष्ट थी कि ऊँटों की संख्या बहुत कम होती जा रही थी और साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने इसको राज्य पशु भी घोषित किया। हमें लगा कि समय से मुकाबला कर रहा है ये पशु और इस पशु को पालने वाले सभी लोग उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि कुछ न कुछ मदद के रूप में कोई कार्यक्रम किया जाए जागरूकता फैलाई जाए इनकी जिंदगी को जितना सहज बना सकते हैं उसका एक प्रयास करें और उस प्रयास को लेकर ही मैंने ये ऊँटारी बाता कार्यक्रम एक मन में प्रोग्राम बनाया और सबसे पहले मैंने इस बारे में आकाशवाणी में आकर बातचीत की। जिस वक्त इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे थे 16 अप्रैल 2015 को इसी स्टूडियो में हमारे सहायक महानिदेशक डॉक्टर बीएस प्रकाश साहब हमारे बीच उपस्थित थे और उसी दिन जो हमारी एक लॉन्चिंग सेरेमनी या उद्घाटन समारोह हुआ था उस वक्त मैंने इस कार्यक्रम को लेकर कई बातें कही थी कि ये एक साधारण सा कार्यक्रम नहीं होगा सिर्फ एक रेडियो प्रोग्राम नहीं होगा। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप सभी लोग साथ जुड़े लोगों की हम जितनी संभव मदद कर पाए और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पाए यही हमारा इस कार्यक्रम को चलाने का मकसद था और एक से अनेक तक ले जाने का मकसद।
और डॉक्टर साहब देखो जो आप कहो नहीं के लोग जुड़ता गया तो इन भरोसा मैं भी दे रहा हूँ क्योंकि देखो क्या करे के फौज में नगाड़ो और बात मायने हुकारो जरूरी होया करे तो ऊँट पालक आपरी हर बात ने हुकारो देवने देखो हर बार हाजिर होया कि नहीं होया। और बोमजी भाई देखो अखाणो है कि ऊँट गम जावे तो कांबड़ियों खोस लीजिए और आज देखो साचा नहीं यहाँ लागे कि मरु प्रदेश ऊँट गम गयो है जिको की ऊँटारी बातारे माध्यम से यानी एक मुहिम चलानी पड़ गई।
आज की मुहिम चाली है इसो लोग सजग हुआ है चेत्या है ऊँट रे प्रति। और अब डॉक्टर साहब आगे बातचीत करा इनसु पहला महाराज का ऊँट पालक भाई है बेन थोड़ो आप बताओ कि इधर जी ऊँटारी की उत्पत्ति है और विकास है वो किया हुआ।
इसकी उत्पत्ति को देखते हैं तो ऊँटों की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका में आज से करीब 4.5 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और उस वक्त ये लगभग एक खरगोश के आकार का हुआ करता था। उसके बाद के अवशेष बताते हैं कि 3.5 करोड़ वर्ष पहले ये करीब एक बकरी के आकार का हुआ करता था और जो आज की स्थिति या आज की जो इसकी जगह है यानी कि अफ्रीका एशिया और अरब के देश यहाँ ये करीब 20 से 30 लाख वर्ष पहले ये यहाँ पर आया और अगर इससे और आगे की बात करते हैं कि इसको लोगों ने या आदमी ने पालना कब शुरू किया, तो वो लगभग महाभारत काल के आसपास का समय था, उस वक्त से लोगों ने इसको अपने काम में लेना प्रारंभ किया।
और डॉक्टर साहब देखो एक बात और है, केटावरा ने अपने घर मायने बैठ बात बतावानी तो बस समझ में दूरी आवे, पर बाहर लोग कोई बता देनी तो बने लगे क्या तो बहुत मोटी बात है, ऊंची बात है। तो आप राजस्थान और भारत रे माए तो ऊंटारी बात करा, यहाँ पर नवी पीढ़ी ने आ बताओ कि कहीं विदेशा रे मायने भी आज ऊंट पालन करे है, ऊंटारी कई स्थिति है, और उनके बाद में बताओ कि अपने देश में ऊंटारी कई स्थिति है।
बिल्कुल गौरा बेन, ये सही बात है कि हम अपने बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन विश्व परिदृश्य में हम देखते हैं तो विश्व में करीब 48 देशों में ऊंट पाला जाता है, और विश्व में जो ऊंटों की संख्या है वो करीब 2,80,00,000 के करीब है। और ये सबसे बड़ी बात है कि वहां पर ऊंटों की संख्या यानी कि विश्व में कुल ऊंटों की संख्या उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और हमारे देश में इसमें लगातार कमी आ रही है। उसका जो मुख्य कारण है कि वहां पर हर चीज यानी कि चाहे वो ऊंटनी का दूध हो, चाहे ऊंटनी के मांस का उत्पादन हो, और चाहे रेस का हो, चाहे वो टूरिज्म में हो, और भी कई तरह के उपयोग वो लोग करते हैं जो हमारे यहाँ पर नहीं होता है। हम जहाँ तक दूध की बात करते हैं तो 27 देशों में जो FAO का डाटा बताता है कि 27 देशों में ऊंटनी का दूध नियमित रूप से निकाला जाता है और वो लोग उसको काम में लेते हैं, और ये करीब 29,00,000 टन प्रतिवर्ष होता है। उसी तरह जो है ऊंटनी का मीट जो है वो करीब 37 देशों में होता है, 37 देशों में इसका लगातार उपयोग होता है, और ये करीब 5,00,000 टन प्रतिवर्ष होता है। भारत में इसकी बात करते हैं तो ना हमारे पास कोई दूध का आंकड़ा है। ये चीज मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब तक किसी पशु का कोई उपयोग नहीं होगा वो उसको आप रख नहीं पाएंगे और उसकी संख्या में कमी आना तय है। तो जैसे विदेशों में उपयोग हो रहा है, हम कम से कम दूध उत्पादन में हम इसको जरूर बढ़ा सकते हैं, और ये हमने पहले अपने प्रोग्रामों में बताया है कि मानव की आवश्यकता के मुताबिक भारत में दूध उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हम इस पर फोकस करना चाहते हैं, इस पर अपन जोर देना चाहते हैं कि इसको अधिक से अधिक दूध उत्पादन में काम में लिया जाए।
और देखो डॉक्टर साहब, देखो ऊंट जो है वो अपने संस्कृति रो अभिन्न अंग है, पर आज राज का हमारा मोटियार है, हमारा युवा है, इन भागदौड़ रे जीवन माए इनसे दूर होता जा रहा है, क्योंकि उनने ठाई को नहीं कि ऊंट की विशेषता है वह कहीं कहीं है। और आज मैं आपसे वही निवेदन करूं कि महाराज का है, युवा साथी है, मोटियार है, बेन आप बताओ कि ऊंट की विशेषता वह कहीं है ताकि वह भी सुजुड़े।
देखो साहब, ऊंट जो है इतने विपरीत वातावरण में रहता है तो बिना किसी विशेषता के कोई भी इस वातावरण में रह नहीं सकता। लेकिन ऊंट और ऊंट परिवार के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि दुनिया का सबसे महीन धागा, प्राकृतिक धागा, वो ऊंट परिवार के सदस्य से आता है और वो है विक्यूना। विक्यूना का जो ऊन है वो 6 से 10 माइक्रोन की होती है, यानी कि जो विश्व का सबसे बढ़िया महीन धागा जो मिलता है प्राकृतिक रूप से वो आपको ऊंट परिवार के सदस्य से मिलता है। दूसरा जो है, आपने देखा होगा कि ऊंट के ऊपर का जो होट होता है वो 2 भागों में लगभग बटा हुआ सा होता है, और ये दोनों वो अलग अलग रूप से हिला सकता है, ये एक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा जो ऊंट है वो समुद्री पानी भी जो इतना खारा होता है उसको भी पी लेता है। एक और चीज है कि जो हमारे 2 कुबड़ वाले ऊंट है उनको परिस्थिति जब पड़ती है तो वो बर्फ भी खा के अपनी पानी की जो जरूरत होती है उसको पूरा कर लेते हैं। इसके बाद एक और चीज है कि इसकी जो लाल रक्त कणिकाएं अंडाकार शेप की होती है, अंडाकार आकार की होती है, और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके इस विशेष आकार के कारण ये छोटी से छोटी जो रक्त की धमनियां होती है उसमें बड़ी आसानी से चला जाता है। तो आप, ये एक सवाल उठता है कि क्या दूसरे पशुओं में नहीं जाता। अब दूसरे पशुओं और इनमें एक फर्क है कि अगर जब ऊंट को पानी नहीं मिलता कई दिन तक तो इसका खून गाढ़ा हो जाता है, और उस गाढ़े खून में भी ये रक्त कणिका शरीर के हर अंग में पहुंच जाए और ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचा दे, उसके लिए ये एक इसकी विशेष विशेषता है कि ये इस पर्टिकुलर आकार, इस विशेष आकार के कारण ही ये वहाँ छोटी से छोटी धमनियां और शरीर के हर अंग तक चाहे खून कितना ही गाढ़ा हो जाए उस परिस्थिति में भी ये चली जाती है। ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये जब इनको पानी वापस मिलता है ऊंटों को तो ये 240% तक फूल सकती है, जबकि अन्य पशुओं में ये 150% तक ही संभव होता है। तो इतनी सारी इनकी विशेषताएं। इसके साथ साथ ये जिस प्राकृतिक रूप में जहां पला बढ़ा और वहां जिस तरह के खाने पीने की चीजें मिलती है उसको लेकर भी इसके पेट में कई तरह के बदलाव हुए हैं। और इसका जो है, हम इसको कहते तो हैं कि ये भी रुमिनेंट है, लेकिन इसके पेट के 3 ही भाग होते हैं जबकि आम गाय और इनमें 4 भाग होते हैं। और उन 3 भागों में ये जो हम देखते हैं कि पहला जो भाग है वो 2 अलग-अलग तरह की संरचनाओं का होता है, दूसरा भाग है वो थोड़ा छोटा होता है, और तीसरा भाग जो है, तीसरा और चौथा हम कह सकते हैं कि एक साथ आता है और वो काफी हद तक आंतों के रूप जैसा हो जाता है और वहाँ उसमें जो हमारे अम्ल वगैरह जो सिक्रीट होते हैं वो वहाँ होते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसके शरीर की संरचना, शरीर की विशेषताएं, ये जिस तापमान में रहता है, जहाँ जितनी पानी उपलब्ध होता है, जहाँ जिस तरह का खाद्यान्न उत्पन्न होता है, उस अनुसार ये पूरा डला हुआ।
पूंजी भाई देखो डॉक्टर साहब बताई ऊंठारी विशेषता अपनी नूवी पीढ़ी ने पर यारी विशेषता कही है कि जिके तरीके से बताई है नी तो यारो जिको बाहर है नी ये बतायो कि मैं एकलो चालियो हो ऊंठारी बाता करने ऊंठारे संरक्षण री मुहिम ने लेर तो मैं यहाँ भरोसा दे रहा हूँ कि पांच चारी लाठी एक रो बारो ये मारी नूवी पीढ़ी है नी इन एक एक लाठी ने लेर यहाँ सारू बारो कम कर देला है आगे बढ़ला। पर देखो एक भार तो मैं मारक ने भी राख्या करूँ पखाल रमा ने गालर गीतड़ला तो अब देखो यारी मनवार सारू मारी पखाल रमानू एक गीतड़लो तो काढ़नो पड़ेला ही पड़ेला
बिल्कुल
पर देखो वो मारी दायरो नहीं
तो
यारी दायरो
डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब दायरो
तो पूछना डॉक्टर साहब आप किसो गीतड़लो सुनना चाहो
चलते चलते कभी अलविदा ना कहना।
भाई देखो डॉक्टर साहब थे माने मनरी सगली बातें करो नी तो थाने मनरी एक बात तो मारी पखाल भी करी सके है थानी दायरो गीतड़लो देखो अबार हाजिर करा पखाल मुकाडर
तो आप से सुनो सा डॉक्टर साहब दायरो गीतड़लो गौरा बेंडी पखाल चो।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना।
बार आप सुनियो डॉक्टर साहब रिदायरो गीतरलो गवरा बेंडी पखालचो।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर
और इन बेड़ा आप से सुन रिया हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बाता। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधारिया है डॉक्टर शरद चंद्र मेहता और आज अपन बातचीत कर रहे हैं ऊँटा री बाता ऊँट संरक्षण एक मुहिम।
और डॉक्टर साहब देखो एक कागज मारे नुवे ऊँट पालक रायोड है जो मैं आपने भरोसा दिलायो है कि अठे नित्य नुवा ऊँट पालक जुड़ रहा है, तो वे पूछनी चाहे है कि जीन आधारित ऊँटा रो चयन क्या करा, तो हमारी जिज्ञासा ने देखो थे पधारोड़ा होनी तो पूरी करी दो।
देखो गवरा बहन और मोमजी भाई और सभी ऊँट पालकों, मैंने पिछले एक कार्यक्रम में बताया था कि हमें अच्छे नर का चयन कैसा करना चाहिए, अच्छी मादा का चयन कैसे करना चाहिए, लेकिन आज समय बदल गया है। आज जिस तरह विकास हुआ है उसके साथ साथ जो चयन के तरीके हैं उनमें भी काफी बदलाव हुआ है, और उस बदलाव में कभी हम एक पर्टिकुलर एक विशेष चीज को लेकर हम चयन करते थे, जैसे दूध उत्पादन, फिर हम चले कि दूध के साथ हमें उसकी शारीरिक वृद्धि का भी ध्यान रखना है, फिर हम चले कि उसके साथ साथ हमें इसकी प्रजनन क्षमता का भी ध्यान रखना है, तो हम एक से लगाकर अनेक कई जो है उसके ट्रेड्स पे जाने लगे। उसके साथ साथ जब समय बदला कि भाई ये तो नहीं चलेगा काम, तो हम एक इंडेक्स मेथड काम में लेते थे जिसमें हम कई सारे 3-4-5 गुणों को एक साथ लेकर पशुओं का वर्गीकरण करते और उसको चयन करते थे। आज जो समय आ गया है कि हमारे पास डीएनए लेवल पे आरएनए लेवल पे सारी मशीन्स उपलब्ध है, हम उसको पढ़ सकते हैं, और इसमें मैं आम पशुपालक को ये बताना चाहूंगा कि कई बार होता है कि जैसे एक समूह है, उस समूह में एक ही तरह का वातावरण है, एक ही तरह का पानी पीते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, फिर भी जो है कोई पशु बीमार हुआ कोई पशु बीमार नहीं हुआ, किसी का दूध ज्यादा है किसी का दूध कम है, यानी कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि उस एक व्यक्तिगत उस ऊंट में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है जीन्स का, कुछ ऐसी संरचना है उसके डीएनए की जो उसको अन्य रोगों को या रोगों को आने से या उत्पादन क्षमता में उसको बेहतर रखने में मदद करता है। तो आज की जो ये मशीनें आ गई है, इस मशीन से हालांकि गाय और भैंस में और जितने बाकी जानवरों में जिस रफ्तार से इसमें काम हुआ है, ऊँटों में उस रफ्तार से काम नहीं हो पाया, लेकिन आज के समय में भी जो इसके साथ के ऊँट परिवार के बाकी सदस्य हैं, चाहे वो अल्पका हो लामा हो चाहे दो कुबड़ वाला ऊँट हो या एक कुबड़ वाला, अब धीरे धीरे इसकी भी जो है पूरी डीएनए की संरचना हमारे पास कंप्यूटर में करीब करीब उपलब्ध हो गई है, और अब हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्तिगत ऊँट में किसी एक विशेष ऊँट में कोई चीज थी वो क्यों थी और उसका उस गुण से क्या संबंध था, उस पर्टिकुलर उस विशेष डीएनए को उस विशेष जीन को, और उसको हम वैज्ञानिक भाषा में एसएनपी कहते हैं कि उस एसएनपी को हम पहचानते हैं और फिर उसको देखते हैं कि क्या ये एसएनपी एक मार्कर के रूप में एक पहचान चिन्ह के रूप में कार्य कर सकती है कि जैसे ये किसी में है तो वो बीमार होगा या नहीं होगा, या एक कॉम्बिनेशन एसएनपी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का प्राणी है वो दूध भी अधिक देगा, उसमें वृद्धि भी अधिक होगी और प्रजनन क्षमता भी अधिक है, बीमार भी कम होगा, तो वो कॉम्बिनेशन आज के समय में निकाले जा रहे हैं। ऊँटों में भी इसका प्रचलन अब काफी हद तक बढ़ गया है, भारत में भी काम हो रहा है, और सच बताऊं तो मेरी प्रयोगशाला में भी मैं यही काम करता हूँ कि जो ऊँट हमारे यहाँ बीकानेर में ही और राजस्थान में ही हम खुद उन ऊँटों के सैंपल लेते हैं कि एक ही वातावरण में जहाँ वही मक्खी मच्छर खाने पीने का सब एक ही साधन था, उसके बावजूद उसी ग्रुप में कुछ ऊँट बीमार हुए और दो ऊँट या चार ऊँट या पांच ऊँट वो बीमार बिल्कुल नहीं हुए, तो उनमें और उनमें डीएनए स्तर पर क्या फर्क, और उस फर्क को हम आगे प्रजनन के कार्यक्रमों में कैसे काम में ले सके, उनका कैसे वृद्धि कर सके ताकि आने वाले समय में जो ऊँट हो वो बेहतरीन पैदा।
बहुत ही बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। और अब देखो महान कागज आयोड है हमारा ऊँट पालक भैया के लाली वार डॉक्टर चंद्रशेखर भटनागर साहब पधारे आ चौपाड़ में, भी ऊँटा रे दूध रे बारे में जानकारी दी, A1 दूध और A2 दूध रे बारे में बात थोड़ी बयान की कम समझ में आई, मैं थोड़ी इस बारे में और जानकारी चाहे भी थोड़ी आज जानकारी माने दो सर।
देखो साहब A1 और A2 दूध आम प्रचलन में आ गया, लोग बातचीत करते हैं लेकिन इसको समझते कम है, और उनके लिए मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा कि ये बीटा केजिन एक प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन के कई रूप होते हैं, वैसे तो इसके 12 रूप पाए गए हैं लेकिन A1 A2 उसमें मुख्य है। A1 का जो दूध है वो ये पाया गया कि जो जो लोग A1 का सेवन करते हैं उसमें जैसे डायबिटीज हुई या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हुई या बच्चों में कई बार मोर्टेलिटी हो जाती है तो वो ज्यादा होती है, उसका एक उन्होंने स्टडी किया तो ये पाया गया, इसलिए A1 दूध को पसंद नहीं किया जाता है। A1 दूध को क्यों इस कारण से होता है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें ये पाया गया कि 67वें अमीनो एसिड में एक परिवर्तन हो जाता है म्यूटेशन के कारण से, और जो A1 दूध होता है उसमें हिस्टिडीन होता है, एक अमीनो एसिड है वो हिस्टिडीन होता है, और जो A2 है उसमें प्रोलीन होता है। अब ये बात तो अमीनो एसिड के स्तर की है लेकिन इससे फर्क एक पड़ जाता है कि इससे पूरी उसकी बीटा केजिन की संरचना में परिवर्तन आता है और उस संरचना में परिवर्तन आने के कारण जब ये आंतों में इसका डाइजेशन होता है यानी कि इसको जब पचाते हैं तो उसमें जो A1 दूध होता है उससे एक 7 अमीनो एसिड का पेप्टाइड निकलता है जिसको हम बीटा केसोमोर्फिन कहते हैं 7 बीटा केसोमोर्फिन कहते हैं और इसकी जो प्रकृति होती है वो ओपियोइड यानी कि अफीम की प्रकृति का होता है और ये जब पेप्टाइड बनता है तो वो बीमारियां ज्यादा करने में इस तरह का पाया गया कि उसके होने से ज्यादा बीमारियां होती है। अब ये बात तो हो गई हमारी गाय और भैंस के परिप्रेक्ष्य में। जब हम जीन स्तर पर इसको देखते हैं तो गाय और भैंस करीब 99% इस जीन पर सेम पाई गई है, एक जैसी पाई गई है और जो यानी कि भेड़ और बकरी है वो भी इसमें 97% तक वही पाई गई है। लेकिन ऊंटों के परिप्रेक्ष्य में लोग कह देते हैं कि ये सारा दूध A2 दूध है, A1 दूध नहीं है। ये आम बोलचाल की भाषा के लिए एक सही मीनिंग है क्योंकि ऊंटों का जो बीटा केजिन बनता है वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है और जो एक अफीम की प्रकृति का पेप्टाइड है 7 बीटा केसोमोर्फिन वो नहीं बनता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक रूप से हम देखते हैं तो ऊंटों का जो ये बीटा केजिन है ये गाय से सिर्फ 76% मिलता है और इस कारण इसकी अमीनो एसिड सीक्वेंस उससे बहुत अलग है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें वो दुर्गुण नहीं है जो A1 में होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रकृति से इसको ये कहना कि इसकी A2 की सीक्वेंस और जो A2 की सीक्वेंस गाय में है वो सेम है वो उचित नहीं होगा। तो ये एक जानकारी है, लेकिन हाँ इसके ऊंटनी के दूध से वो कोई नुकसान नहीं होगा जो A1 दूध करता है।
डॉक्टर साहब देखो जानकारी तो खजानो है आप रखने जितो काट सका तो ही कम है
कम
क्यों
ओम
जी भाई
बिल्कुल।
पर डॉक्टर साहब देखो आप और आप रो केंद्र ऊंटा और ऊंट पालका सारू ये सगला प्रयास करो हो पर आप ऊंट पालका सु कई सहयोग री उम्मीद करो वहां सु कई अपेक्षा रखो कि वे इन प्रयास सारा मायने आपकी मदद करे क्योंकि आप ऊंटारी बाता चालू करी इंडे साथे साथे आप गांव में भी जाओ हो वहां सु मिलो हो संपर्क करो हो तो आप रो इन मुहिम रे मायने कई अनुभव रहे हो।
देखो गौरा बहन और भौमजी भाई और सभी ऊंट पालकों ये बहुत ही संतुष्टि का विषय है कि ये मुहिम हमने इसी स्टूडियो से यहाँ से चालू की थी और मेरे मन में कई इसके लिए विचार थे और उन विचारों को मैं आप लोगों के सहयोग से जनता के बीच ले भी गया और काफ़ी हद तक मुझे इसमें सफलता भी मिली और मैं कई बार कहता हूँ कि ये ऊंटानी बातें एक सिर्फ रेडियो प्रोग्राम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। ये रेडियो कार्यक्रम चालू करने से पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया था और इसको एक अच्छा रूप और इसको एक दिखने के लिए हमने एक इसका कार्यक्रम का एक लोगो बनाया था। उसके बाद हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया, ये कार्यक्रम 4 आपके बड़े केंद्रों से प्रसारित हुआ और लगभग 21 जिलों में सुना जाता है। ये इन चारों केंद्र का जो कवरेज है वो 21 जिले हैं और इन 21 जिलों में लगभग 4 करोड़ लोग रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था इस तरह से। उसके साथ साथ एक मोबाइल फोन पे हमें एक सुविधा मिलती है जिससे हम कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी अखबार में सूचना हो, चाहे वैज्ञानिक स्तर की कोई सूचना हो, हर तरह की सूचना को हम उस मोबाइल के ग्रुप से पहुंचा सकते हैं। तो वो हमने उस पर पहुंचाई और मुझे बहुत खुशी है कि इस पर माननीय कुलपति महोदय से लगाकर हमारे दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी और प्रधान वैज्ञानिक और निदेशक स्तर के लगभग 100 सदस्य इस पर बने रहे और कभी भी हमने विज्ञान को छोड़कर और कोई बात इस पर नहीं की। इसके साथ साथ जो एक मोबाइल फोन की सुविधा मैंने दी और मैं आज ये कहूंगा कि मेरा जो ये मोबाइल फोन था ये ऊँटों के लिए 108 की तरह इसने कार्य किया तो शायद गलत नहीं होगा। कुछ हमें ऐसी सुविधाएं मिलती है कंप्यूटर पर जिसमें हम एक चीज को कई लोगों के साथ बांट सकते हैं और जो लोग अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम डाउनलोड करके सुनना चाहें या बिना डाउनलोड करके सुनना चाहें तो उनको हमने ये एक ऑप्शन दिया कि आप जैसी आपकी सुविधा हो, जब आपको समय हो, आप इसको सुने। इसी के साथ हमने कुछ वीडियोस बनाए इनके प्रोग्रामों के और वो हमने लोगों के मोबाइल तक पहुंचाए। और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हमने किया वो ऊंट पालकों के साथ गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर के मीटिंग्स की और उन मीटिंग्स में 102 ऑन रिकॉर्ड हमने मीटिंग्स की। वैसे हमारी मीटिंग्स करीब 125 करीब हुई थी और उसमें हमने 1943 पशुपालक यानी कि ऊंट पालक उन मीटिंग्स में आए और हमारे से उन्होंने बातचीत की और हमने जो भी विषय था उस बातचीत का वो उन लोगों को समझाया। इसी के साथ साथ लगभग हमने इन मीटिंगों के दौरान जब कोई ऊंट बीमार था तो ऐसे लगभग हमने 2000 पशुओं का वहां पर उसी समय इलाज भी किया। इसके साथ साथ एक चीज हमने और की कि हमने ग्रुप ईमेल से ये सारे कार्यक्रम भेजे, और इस रेडियो प्रोग्राम के साथ साथ ही हमारे को टेलीविजन प्रोग्राम, चाहे वो दूरदर्शन का हो या अन्य चैनल्स हैं उनके साथ, एफएम रेडियो के साथ और जो स्थानीय अखबार हैं उनके साथ भी हम जुड़े रहे और ये कार्यक्रम हमारे आते रहे। आम जनता में हमने कुछ चीजें ऐसी भी की, जैसे हमने कैलेंडर्स बनाए, पोस्टर्स बनाए, पिक्चर्स बनाई जो एक मैसेज दे ऊँटों की दूध की विशेषता के बारे में और अन्य जानकारियों के बारे में। इसी तरह हम एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं ताकि लोग जब चाहें उसको भी देख कर इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। और हमने ऊँटों में कंपटीशंस भी करवाए और जो ऊँट पालक थे उनके प्रोत्साहन हेतु हमने करीब 40-50 इनाम उन ऊँट पालकों में बांटे। तो इस तरह हमने ये करीब 15-16 तरह की गतिविधियां इस मुहिम में की और इन सब को करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं कहूँगा कि जहाँ से मैं चला था उसके बाद आज जहाँ मैं हूँ उसमें हर उस एक शख्स का योगदान है, चाहे उसने मेरे को किसी गांव में या ढाणी में मीटिंग करने में सहयोग दिया, चाहे वो पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं जिन्होंने मेरे को मदद की, या चाहे वो जितने भी इस ऊँटारी बाता कार्यक्रम में विशेषज्ञ आए और उन्होंने जो बातचीत की, और चाहे वो भोमजी भाई हो या गवरा बहन हो या आकाशवाणी हो, हर वो शख्स जिससे मेरे को जितनी उम्मीद थी उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया कि मैं आज इस कार्यक्रम को इस मुकाम पर ले गया। कि जब मैंने लिम्का बुक में अप्लाई किया तो आपको विश्वास नहीं होगा कि शायद बहुत कम ऐसा होता है कि लिम्का बुक की टीम खुद विजिट ना करे।
बिल्कुल।
और हमारे केस में ऐसा हुआ कि जैसे ही हमने उनको सारे ऑडियो वीडियो सीडी और कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स भेजे तो उनका सीधा फोन आया कि दिस इज एक्सेप्टेड एंट्री फॉर 2017 एडिशन। तो ये सब आप लोगों को समर्पित है जो इसके घटक रहे। और उस पर मैं एक छोटा सा शेर पढ़ना चाहूंगा।
बिल्कुल।
आदत अलग है हमारी दुनिया वालों से, आदत अलग है हमारी दुनिया वालों से, कम दोस्त रखते हैं मगर लाजवाब रखते हैं।
क्या बात है।
कम दोस्त रखते हैं मगर लाजवाब रखते हैं। बेशक हमारी दोस्ती की माला छोटी है, बेशक हमारी दोस्ती की माला छोटी है, पर फूल उसमें सारे गुलाब रखते हैं, सारे गुलाब रखते हैं।
क्या बात है डॉक्टर साहब। देखो 4 करोड़ लोगों तक और 21 जिले तक आप पहुंच गया, आ कम बड़ी बात थोड़ी है, आ माला छोटी को नहीं है। हाँ देखो गौरव बेन, ये बातें सुनी
सुनी नहीं,
कितना लोग जुड़िया है और थे कया करो के हाजिरी हाथी हुए, पर यहाँ सोशल मीडिया रे माध्यम से इंटरनेट रे माध्यम से जिका हमारा ऊंट पालक भाई घर बैठा बिया तक भी आ ज्ञान री बातें पहुंचाई, तो आ एक बहुत बड़ी जानकारी थी बिया वास्ते भी।
मोटी बात है के हाजिरी हाथी तो हुई है पर यार ज्ञान री पाती जी को है घरे बैठोड़ा ने भी
मिल गई।
और बोमजी भाई देखो सदाई तो शुरुआत रे मायने जी में दुओ सुनाऊ पर आज आखिर मायने भी एक दुओ सुनाऊला
जरूर।
कया करे के बातरलिया घर उजड़े बातरलिया घर होए, बातरलिया घर उजड़े बातरलिया घर होए, ज्ञानी सु ज्ञानी मिले बात बात अर बात। तो इन बातारी फुलवाड़ी रे मायने देखो 33 ज्ञान रा फूल खिलिया। उम्मीद करू के इन ज्ञान रे फूला सु ऊट पालकारा घर बसिया वेला, पण आज इन बातारी फुलवाड़ी ने बिसाई देवाला। पण इन रे साथे साथे देखो मेहता जी सु अरदास भी कराला के वे ऊट पालकारे हित सारू इन ज्ञान री फुलवाड़ी ने लेर जल्दी पाछा हाजिर वेला और इन ने बिसाई देवेला विराम नहीं।
तो ऊट पालक भैया आ एक बिसाई है, इन्हें समापन मत समझा, मैं फेरू मिलसा एड़ी कार्यक्रम रे साथे और अब माने आज्ञा दिरो और मैं आज्ञा लेऊं डॉक्टर शरणचंद मेहता साहब सु कि आप जुड़ा बहुत ही बढ़िया रहे हो और हमारा आज का ऊंट पालक भाई है रेडियो माध्यम सु हजारों नहीं लाखों की संख्या रे माने जुड़िया, इन वास्ते मैं आप रे और आप रे विभाग ने और आप रे जितना भी ज्ञानी पावना थे वैज्ञानिक पधारिया बियाने भी मैं आभार व्यक्त करा और आभार व्यक्त करा हमारे सगला ऊंट पालक भैया कि आप ई तरह मासू जुड़ियो डारिया। और अब देखो विदा लेवड़ो तो मन भय को नहीं पड़ो, बखत जिको है नी वो बहुत बड़ी सीख देवे
क्योंकि बगत रा बाया मोती नीप जे है, बगत रे साथे रह वाला नी तो सफलता जरूर मिलेला आपाने। तो मेहता जी ने देवा धन्यवाद और लेवा सीख चाला
आप सबने करा में
राम राम सा
राम राम सा।
तो सा ओहो ऊंटारी बाता कार्यक्रम।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
ऊंटारी बाता आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।